स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 21 जून और दिन मंगलवार। अमरीकी पुलिस का दावा, डोनाल्ड ट्रंप की रैली में गिरफ्तार शख्स दरअसल उनकी हत्या करना चाहता था। दुनिया के कई देशों में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
लंबा श्वास, 5 बार घुमाना है, 2, 3, 4 और 5, ऐसे दूसरी ओर से भी घुमाएंगे विपरीत दिशा से।
रक्षा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी, करेंगे एक विश्लेषण।
इंडियन कंपनीज को सदमा पहुंच सकता है, मगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को यह एडवांटेज भी हो सकती है।
अखबारों की समीक्षा और खेल समाचार भी, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
BBC समाचार, प्रभात पांडे से। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रैली में जिस शख्स ने पुलिसकर्मी से बंदूक छीनने की कोशिश की थी, वो ट्रंप की हत्या करना चाहता था। अदालत में पेश किए गए कागजात के आधार पर ये बात कही जा रही है। शनिवार को रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार में शामिल डोनाल्ड ट्रंप की रैली में ये घटना हुई। गिरफ्तार किए जाने वाले 19 साल के माइकल स्टीवन सैंडफोर्ड ब्रितानी नागरिक हैं। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पिछले साल 21 जून से इसे मनाने की शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस मौके पर 1,00,000 से ज़्यादा योग कार्यक्रम रखे गए हैं। मुख्य कार्यक्रम चंडीगढ़ में है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बहरीन के सबसे महत्वपूर्ण शिया मौलवी शेख ईसा कासिम के घर के बाहर उनके हज़ारों समर्थकों ने इकट्ठे होकर बहरीन सरकार और किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा के खिलाफ नारे लगाए। बहरीन ने शिया मौलवी की नागरिकता रद्द कर दी है। बहरीन सुन्नी बहुल देश है। गृह मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए शेख ईसा कासिम पर विदेशी हितों को साधने और सांप्रदायिकता और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए अपने पद के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इस बीच अमरीका ने कहा है कि शिया मौलवी की नागरिकता छीने जाने का यह फैसला बहरीन की सुधार प्रक्रिया के लिए झटका है। अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, शेख ईसा कासिम की नागरिकता छीने जाने के इस फैसले से हम हैरान हैं। उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, उसे साबित करने के लिए क्या भरोसेमंद सबूत जुटाए गए हैं, इस बात का भी हमें अभी तक पता नहीं चला है। शिया मौलवी को अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया, इसलिए हम इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीब से नज़र रखे हुए हैं। ये थे बहरीन के घटनाक्रम पर चिंता जताते अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी। वहीं शिया बहुल देश ईरान ने चेतावनी दी है कि बहरीन के इस फैसले के खिलाफ हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। रूस के एक फुटबॉलर सपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया है। अलेक्जेंडर स्प्रिंग नाम के इस शख्स को यूरो कप में रूस और वेल्स के बीच मैच के दौरान स्टेडियम से पकड़ा गया। उन्हें पिछले सप्ताह इंग्लैंड और रूसी समर्थकों के बीच हुए हुड़दंग के बाद फ्रांस से बाहर करने का आदेश सुनाया गया था, लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से फिर फ्रांस में दाखिल हो गए। सोमवार को वेल्स के हाथों 0-3 से हारकर रूस यूरो कप से बाहर हो गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुलिस ने जूतों की दुकान के एक मालिक को ईश निंदा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दुकानदार पर और आरोप है कि वो हिंदुओं के पवित्र ओम निशान लगे हुए जूतों को बेचता था। BBC समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है जून की 21 तारीख और दिन मंगलवार और वक्त हो चला है 6:33:46। आज दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत, अमेरिका और कई देशों में मनाया जा रहा है। इस पर करेंगे हम बातचीत बाद में, लेकिन फ़िलहाल चलते हैं एक दूसरी खबर के लिए अमेरिका। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई थी। जी हाँ, शनिवार को लास वेगस में ट्रंप की एक रैली में एक शख्स वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी की पिस्तौल छीनकर उससे ट्रंप की हत्या करना चाहता था। उस समय तो उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने अदालत में जो दस्तावेज पेश किए हैं उनकी बुनियाद पर अब ये बातें सामने आई हैं। इस बारे में बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुना रहे हैं प्रभात पांडे।
Thank you, everybody. Thank you very much. Oh, it's a little hot out there, right? Would you say it's a little hot?
ट्रेजर आइलैंड कैसीनो में डोनाल्ड ट्रंप की रैली और समर्थकों का शोर। तभी 19 साल के माइकल स्टीवन सैंडफोर्ड एक पुलिसकर्मी के पास पहुंचे और कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, और इसी दौरान उन्होंने उस पुलिस वाले से गन छीनने की कोशिश की। उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास ब्रितानी ड्राइविंग लाइसेंस है और वो अमेरिका में करीब 1.5 साल से रह रहे हैं। पुलिस के अनुसार सैंडफोर्ड पिछले 1 साल से ट्रंप को मारने की योजना बना रहे थे, लेकिन शनिवार को उन्होंने आखिरकार ये करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें अब इस काम को करने के लिए हिम्मत हो गई थी। सैंडफोर्ड ने बताया कि उन्होंने इससे पहले कभी भी फायरिंग नहीं की है, लेकिन गोली चलाना सीखने के लिए वो 17 जून को लास वेगस के एक फायरिंग रेंज में गए थे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी रैलियों के दौरान लगातार विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। ऑरलैंडो में एक गे क्लब में हुई गोलीबारी की घटना के बाद उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय पर जो हमला बोला उसके लिए भी उनकी खासी आलोचना हुई थी। अमरीकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप के रवैये की आलोचना की है। उन्होंने कहा,
willing the politics of fear and intolerance. Like the proposal to ban Muslims from entering the United States.
ट्रंप की नीतियां डर और हिंसा को बढ़ावा देने वाली हैं। अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कहना, मुसलमानों की प्रोफाइलिंग की बात कहना, अमेरिका को महान लोकतंत्र बताना और फिर देश में रह रहे 15 लाख मुसलमानों को अलग थलग करने की बात कहना अमेरिका के लिए बेहद हानिकारक है। ज्यादातर मुसलमान शांति प्रिय हैं, इसलिए उन पर हमले करना कोई देशहित की बात नहीं है। ऐसा करना चरमपंथियों के हाथ में खेलने जैसा है। ये थे डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते अमरीकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन। इस बीच पुलिस ने यह भी बताया है कि सैंडफोर्ड ने फीनिक्स में होने वाली ट्रंप की रैली में शामिल होने के लिए वहां की टिकट भी ले ली थी। उन्हें जल्द ही नेवादा की एक अदालत में पेश किया जाएगा।
ये थे प्रभात पांडे।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, आज दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस मौके पर 1 लाख से ज़्यादा लोग कार्यक्रम 1 लाख से ज़्यादा योग कार्यक्रम रखे गए हैं। मुख्य कार्यक्रम चंडीगढ़ में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। पिछले साल उन्होंने पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर लगभग 35,000 लोगों के साथ योग किया था। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले कार्यक्रमों से योग को लेकर लोगों में जागरूकता तो पैदा होती है, लेकिन कई लोग इसे लेकर सवाल भी उठाते हैं। सुनिए अशोक कुमार की ये रिपोर्ट।
लंबा श्वास 5 बार घुमाना है, 2, 3, 4 और 5, ऐसे दूसरी ओर से भी घुमाएंगे विपरीत दिशा से।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो आज है, लेकिन दिल्ली के इंडिया गेट पर योग गुरु बाबा रामदेव ने 2 दिन पहले से ही अभ्यास कराना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि रविवार को करीब 30,000 लोग इस अभ्यास में शामिल होने के लिए चटाई लेकर पहुंचे। माहौल लगभग वैसा ही था जब पिछले साल राजपथ पर पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के 84 देशों के लगभग 35,000 लोगों के साथ योग किया था। इस मौके पर उन्होंने कहा था,
बाकी सब तेज गति से बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो न हो कि इंसान वहीं का वहीं रह जाए। अगर इंसान वहीं का वहीं रह गया और विश्व में ये सारी व्यवस्थाएं विकसित हो गई, तो ये मिसमैच भी मानव जात के लिए संकट का कारण बन सकता है। और इसलिए आवश्यक है कि मानव का भी आंतरिक विकास होना चाहिए, उत्कर्ष होना चाहिए।
दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने ऐलान किया था कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। आज दूसरा मौका है जब दुनिया में योग दिवस पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि देश में आज सामूहिक योग अभ्यास के 1,00,000 से ज्यादा कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके लिए भारत सरकार के मंत्रियों को अलग अलग राज्यों में भेजा गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में योग अभ्यास में हिस्सा लेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही योग को लोकप्रिय बनाने पर काफी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन कई लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं। अयंगर योग के प्रशिक्षक प्रशांत अयंगर कहते हैं,
When it is being done on a mass scale and with such a fervor and drive, it will only...
जब इतने बड़े स्तर पर होता है, इतने जोशो खरोश से होता है, तो जाहिर है कि इससे लोगों में योग को लेकर जागरूकता पैदा होगी। लेकिन योग करना एक निजी मामला है, इसे इतने बड़े स्तर पर नहीं किया जा सकता। ये वैसा ही है जैसे आप हमाम में नहाते हैं लेकिन वहाँ असल में नहाते नहीं हैं, उससे आपकी सफाई नहीं होती, बस आप सबके साथ डुबकी लगाते हैं।
प्रशांत अयंगर मानते हैं कि अगर सरकार योग को बढ़ावा देना चाहती है तो उसे योग केंद्रों को आगे बढ़ाना चाहिए जहाँ योग सीखा जा सके।
दिस इज नॉट ए प्रॉपर स्टेप Which is being contemplated upon to put yoga in a large scale.
ये ठीक कदम नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर योग किया जाए। लोगों से स्कूल, कॉलेज, एकेडमी, पुलिस सेंटर और आर्मी में योग करने को कहा जा रहा है, लेकिन योग सिखाने वाले टीचर कहाँ हैं? अगर टीचर नहीं है तो फिर नौसिखिए टीचर रखेंगे जिनसे आगे चलकर परेशानियां ही होंगी।
योग की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ रही है। दरअसल योग लोगों को चुस्त दुरुस्त और तनाव मुक्त रहने के प्राकृतिक तरीके सिखाता है और इसमें किसी मशीन की जरूरत नहीं होती, और शायद यही बात लोगों को इसकी तरफ खींचती है। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो उन्होंने कहा कि दुनिया भर में योग हो रहा है, हालांकि भारत ने इस पर अपना बौद्धिक अधिकार नहीं जताया है।
ये थे अशोक कुमार, और दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में एक पार्क में मौजूद हैं इस वक्त बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। नितिन, बताएं कि इस वक्त वहां पर योग की क्या तैयारी चल रही है?
सर, यहाँ पर कनॉट प्लेस का ये है कि वो जितनी रोडें कनॉट प्लेस से आती है सेंट्रल पार्क की तरफ, वो सारी रोडों पे नाकेबंदी है। वहाँ पर मैट्स बिछी हुई है और हजारों की तादाद में लोग आधे घंटे से जो है बैठ के योगा कर रहे हैं। बीच में मंच लगा है जहाँ पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग शामिल है, वो विराजमान है, मीनाक्षी लेखी आगे सांसद है वो है। लेकिन जो खास बात मुझे आज लगी है और जो 2 साल पहले भी लगी थी वो ये है कि ज्यादातर जो योग में भाग लेने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी अपनी मैटों पर, वो ज्यादातर किसी न किसी केंद्र से जुड़े हुए हैं। यानी आम नागरिक जो है वो मुझे दिल्ली के कम से कम कनॉट प्लेस के बीच में अभी तक कम मिले हैं। हमारे साथ एक सज्जन है जो कनॉट प्लेस में ही रहते हैं। आप कनॉट प्लेस में रहते हैं, क्या नाम हुआ?
नाम देशराज।
देशराज, ये बताइए कि आप तो मुझे आपकी वेशभूषा देखने लगा, आप नहीं शामिल हुए हैं योगा में?
हम तो आए थे लेकिन हमें पता चला कि यहाँ पास वगैरह की जरूरत है तो इसलिए थोड़ा।
अच्छा, यहाँ पे मतलब लोगों को पास भी होता है, हालांकि हम लोग अभी वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ बगल में योगा हो रहा है और मैटें खाली भी पड़ी हुई है।
जी,
आप आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह का जब होता है इवेंट तो कितनी दिक्कत होती है?
रोज मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं।
आज तो मॉर्निंग वॉक आपकी रोक दी गई, आज नहीं जा पा रहे आप सिक्योरिटी की वजह से, खड़े सिर्फ लोगों को युवा करते थे। तो एक बात
जी,
इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर
जी,
लेकिन हकीकत ये भी है कि योगा हो रहा है, कई सौ लोग, हजार लोग इसमें भाग ले रहे हैं और बड़े मन से योगा लोगों को सिखाया जा रहा है। अब वो एक बड़ी सी जायंट स्क्रीन है और तमाम 10 से 12 छोटी छोटी जायंट स्क्रीनें पूरे कनॉट प्लेस में लगी हुई हैं, उनको देखकर लोग कितना योगा सीख पा रहे हैं ये अभी मुझे इसको पता करने में थोड़ा और समय लगता है।
बहुत बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव, और हम अपने श्रोताओं से माफ़ी मांगना चाहेंगे कि बीच में थोड़ी सी आवाज़ की दिक्कत हुई थी, टेलीफोन लाइन में दिक्कत थी या बैकग्राउंड आवाज़ की वजह से थोड़ी सी आवाज़ की क्वालिटी में कमी आ गई थी। बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर अमेरिका के कई शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रीष्म संक्रांति के मौके पर कल भी न्यूयॉर्क में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुनिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की ये रिपोर्ट।
Stretch tall, turn to the left, exhale, round down. Touch your forehead to your knee. न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में हजारों लोगों ने ग्रीष्म संक्रांति या समर सोलस्टिस के मौके पर योग कार्यक्रमों में भाग लिया। भीड़ भाड़ वाले इलाके टाइम्स स्क्वायर पर भी आयोजक सबको योग करने की दावत दे रहे थे।
Flexibility is not required to start a yoga practice. So tell those people who are saying no, I can't do yoga, that they can do yoga.
सुबह तड़के से ही टाइम्स स्क्वायर पर योग करने के लिए आम लोग जमा होने लगे थे। इनमें विभिन्न संस्कृतियों और मूल के लोग शामिल थे।
Yoga helps me balance my life, more or less.
Oh my god, it was so amazing. It was so strange just being like in the middle of everything, like one of the busiest cities in the world.
सन 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था और इसी सिलसिले में अमेरिका के विभिन्न शहरों में योग कार्यक्रम और गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में और अन्य स्थानों पर योग के कार्यक्रमों का आयोजन भारतीय कौंसुलेट और कई सांस्कृतिक संस्थाओं ने मिलकर आयोजित किया है। शहर के विभिन्न स्कूलों, मंदिरों के अलावा न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे और न्यूजर्सी में न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मूल रूप से भारत के बिहार राज्य के आचार्य अनुध्यानानंद अवधूत भी टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद थे।
ये बहुत ही खुशी का माहौल है, यहाँ बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं योगा के आज इस पावन अवसर पर। प्रशंसनीय कार्य है, हम लोगों ने भी कल किया किशन पार्क में, वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे लोग आए थे। हम लोग दूसरे जगह पर भी गए थे, वहाँ पर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए थे। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य पर ही मनाया जा रहा है और आज ये योगा पूरे वर्ल्ड का योगा हो चुका है, तो ये योगा सिर्फ भारत का नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लोग इसको उत्साहपूर्वक इसको कर रहे हैं।
दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की इमारत पर भी पर्वतासन मुद्रा में एक महिला का रोशनी वाला चित्र भी लगाया गया है। आज यानी 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष मॉर्गन स्लाइकटॉफ के साथ विभिन्न देशों के राजनयिक और अधिकारी भी योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस वर्ष के योग दिवस के कार्यक्रम में योग को एक व्यायाम के तरीके से बढ़कर उसे एक समग्र दृष्टिकोण के तौर पर पेश किया जाएगा और इस बात पर भी चर्चा होगी कि योग के जरिए विश्व भर में सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में किस प्रकार मदद मिल सकती है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
एक दफा फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। इस वक्त हो चुके हैं 6:46 और 33 सेकंड और अब न्यूयॉर्क के बाद एक दफा फिर लौटते हैं भारत। केंद्र सरकार ने उड्डयन और रक्षा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को मंजूरी दे दी है। एफडीआई को लेकर जहां भाजपा पर अपने पुराने स्टैंड से पलटने के आरोप लग रहे हैं, वहीं रक्षा जैसे अहम क्षेत्र को पूरी तरह विदेशी निवेश के लिए खोल देने पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथी अशोक कुमार ने बात की रक्षा मामलों के जानकार राहुल बेदी से और पूछा कि इस फैसले का भारतीय रक्षा क्षेत्र पर क्या असर होगा।
इस पर फर्क पड़ सकता है, मगर इसकी अभी तो अनाउंसमेंट ही नहीं है और इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है और एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पहले इन्वेस्टमेंट थी वो 49% थी और ये लोगों को कम पता है कि पहले भी 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड थी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी में, मगर वो पिछले 5-7 साल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट्स ने डिफाइन नहीं किया उसकी कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट है क्या। तो अब ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं उसको भी अभी डिफाइन नहीं किया, तो उम्मीद है कि ये जो डेफिनेशन है इसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें अगर इसका डेफिनेशन ठीक हुआ और बाहर की कंपनियों को अच्छा लगा तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को काफी हद तक फर्क पड़ सकता है।
मान लीजिए अगर किसी स्थिति में, युद्ध वाली स्थिति में, क्या ऐसा भी होता है जिस देश की कंपनी आपके यहाँ निवेश कर रही है वो रणनीतिक स्वार्थों या हितों से भी उनका कोई लेना देना होता है?
देखिए ये बड़ी आगे की बात है, क्योंकि जिसको यूएस की जो लॉज है उसमें सैंक्शंस जो हैं, जिसको आप बोलते हैं कि रुकावट असले में या रुकावट सप्लाई में पड़ सकती है, क्योंकि यूएस लॉज जो है वो अलाउ नहीं करती कि आप अगर युद्ध कर रहे हैं या आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया या उनकी बहुत सारी कंडीशंस हैं और उस पे सैंक्शंस लग सकते हैं। मगर ये आगे जाके देखना पड़ेगा सरकार को कि बहुत होशियारी से काम लेना पड़ेगा कि ये जो अगर आप 100% एफडीआई इन्वेस्टमेंट करवाते भी हैं तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हिंदुस्तान को ही फेवर करनी चाहिए, बाहर की कंपनियों को नहीं। तो ये ही काबिलियत एमओडी पर सौंपी जाएगी और ये देखना, आगे देखेंगे कि ये काबिलियत अपनी निभाते हैं कि नहीं।
जी, अब तक हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बहुत बात करता रहा है, तो उस दिशा में आगे बढ़ने की बजाय ये 100% कंपनियों को यहाँ निवेश करने की अनुमति देना, ये क्या अपने पिछले रुख से हटना है? क्योंकि चाहे अंतरिक्ष क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, स्वदेशी तकनीक पर काफी जोर दिया जाता है, उसको बढ़ाने पर जोर दिया जाता रहा है अब तक।
बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान की मिलिट्री जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है या मिलिट्री इंडस्ट्री है, उसमें एक ही कमी है, वो टेक्नोलॉजी की है। क्योंकि ये साबित किया है, ये जो गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म आज पास किया है, इसमें ये साबित हुआ है कि हिंदुस्तान में ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं है और ये बाहर के अलावा कहीं से और नहीं आ सकती। तो ये एक बहुत जरूरी अंग है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को आगे बढ़ाना। तो अगर 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाती है और ये कामयाब हो जाती है, मगर ये बहुत बड़ी बात है कहना कि अगर ये कामयाब हो, मगर अगर ये हो जाती है तो हिंदुस्तान की मिलिट्री को काफी हद तक फायदा पहुंचेगा। क्योंकि पिछले 2 साल से जब से ये BJP आई है, इन्होंने लगभग 43 या 50 बिलियन डॉलर की अप्रूवल्स दी हैं इक्विपमेंट के लिए, मगर एक टेंडर नहीं इशू किया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और तकनीकी जो है वो हिंदुस्तान में है ही नहीं।
तो आपको लगता है कि इससे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या पार्टनरशिप वाली बात थी वो भी आगे बढ़ेगी?
वो बढ़ेगी, ये इंडियन कंपनीज को थोड़ा सदमा लगेगा, मगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को जो मेक इन इंडिया है उसका काफी आगे चीज बढ़ेगी, मगर इंडियन कंपनीज को सदमा लग सकता है। क्योंकि उनकी जो कंट्रोलिंग थी, उन्होंने पिछले 10 साल से लॉबिंग किया है कि 49% ही FDI अलाउ करना चाहिए और कंट्रोलिंग शेयर उनके पास होना चाहिए, मगर अब अगर वो ये FDI कामयाब हो जाता है तो इंडियन कंपनियों का कंट्रोल जो है वो हट जाएगा और इंडियन कंपनीज को सदमा पहुंच सकता है, मगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को ये एडवांटेज भी हो सकती है।
ये थे सुरक्षा मामलों के जानकार राहुल बेदी। और अब चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक संसदीय समिति का कहना है कि वहां जेलों में बंद महिलाओं के साथ रात को बदसलूकी होती है और इस तरह की घटनाएं जेल के कर्मचारियों की मिली भगत के बिना नहीं हो सकते हैं। हमारे साथी अशोक कुमार ने बात की इस्लामाबाद में BBC उर्दू के संवाददाता शहजाद मलिक से और पूछा कि संसदीय समिति की रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है।
जी, ये मामला सेनेट है पाकिस्तान का और उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें यह बताया गया, और ये बताया कि जो सेनेट के चेयरमैन है रहमान मलिक, जो पहले इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं, वो इसको इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान की जेलों में जो मलिहाए जो खवातीन कैदी हैं वो उनके साथ बदसलूकी होती है। तो ये बड़ा एक बेक सा वर्ड था कि बदसलूकी से क्या मुराद है, मतलब कि या तो यह कि उनके साथ रेप किया जाता है या उन सेक्सुअल असॉल्ट उन पे होता है या किस तरह की बदसलूकी से मुराद है। ये उनसे कमेटी में तो नहीं पूछा गया, अलग नहीं पूछा गया कि ये आपने जो बात की इसका क्या है। उसने कहा कि आप लोग भी समझते हैं कि रात के वक्त खवातीन के साथ जो बदसलूकी है वो किस तरह की होती है, तो लिहाजा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि क्या
सूरत हाल होती है। जी शहजाद साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो जेलों की स्थिति है वो थोड़ी सी आप बताइए कि जो महिला कैदी हैं और जो पुरुष कैदी हैं, जो मर्द कैदी हैं, उनको साथ साथ रखा जाता है?
जी कुछ ऐसा ही है, पाकिस्तान में जो कैदी महिलाएं हैं उनकी जेलों की तादाद सिर्फ 3 है और ये 3 जेलें भी एक कराची में है, एक पंजाब का जनूबी शहर मुल्तान है और एक KPKA का शहर हरिपुर है, वहाँ पर ये इनकी जेलें हैं। जबकि जो मर्दों की जो जेलें हैं पाकिस्तान में वो 90 से ज्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर हर जेल में जो मर्दों की जेल है वहाँ पर एक अलग बैरक बनाई जाती है खवातीन कैदियों के लिए, लेकिन वहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट होता है या जेल का अमला होता है वो तो मेल होते हैं, जबकि फीमेल के लिए कोई इतना स्टाफ नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये शिकायत हैं कि इनके साथ बड़ी इनके कैदियों के साथ, गो के वो अंडर ट्रायल प्रिजनर भी क्यों ना हो, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है।
शहजाद साहब, ये बताइए कि ये तो आपने जेलों की स्थिति बयान की, तो इस तरह के हालात से निपटने के लिए, औरतों के साथ जो बदसुलूकी हो रही है उससे निपटने के लिए क्या कुछ ऐसे कदम हैं जिनको उठाने के लिए सरकार से कहा जा रहा है?
इसके लिए उनको ये खसूसी तौर पर कहा गया है गवर्नमेंट को कि वो ना सिर्फ इनके लिए जो स्टाफ है खवातीन कैदियों के लिए वो ना सिर्फ फीमेल हो, बल्कि जो जेल सुपरिटेंडेंट होगी
वो भी खातून होगी
जी।
तो इस मामले में सरकार से यही कहा गया है कि वो जो बजट है वो एलोकेट करे ताकि ऐसी जो खवातीन कैदी हैं उनको अलग से रखा जाए ताकि अब फ्यूचर में इस तरह के कोई वाकया जो है वो पेश ना आए।
ये थे इस्लामाबाद से शहजाद मलिक। और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का और प्रभात स्टूडियो में मौजूद है तमाम अखबारों के साथ। जी बताएं प्रभात
जी। इकबाल जी, अखबारों में रक्षा और नागरिक उड्डयन सेक्टर समेत कई क्षेत्रों में जो 100% FDI के ऐलान को पहले पन्ने पर जगह मिली है, इसके अलावा टैंकर घोटाले को लेकर शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल पर FIR को भी पहले पन्ने पर जगह मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर छापा है कि RBI गवर्नर रघुराम राजन के पद से हटने के फैसले के बाद जिस तरह से आशंका व्यक्त की गई थी कि स्टॉक मार्केट गिरेगा, वैसा हुआ नहीं और मार्केट ऊपर चढ़कर बंद हुआ। वहीं द हिंदू ने ये एक अहम खबर छापी है कि चीन ने ये साफ किया है कि दक्षिण कोरिया में जो NSG की मीटिंग होने वाली है उसमें भारत की सदस्यता की बात एजेंडे में है ही नहीं। तो ये इस तरह से भारत की जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं उनके उन दावों को झटका है जो उन्होंने कल कहा था कि चीन को हम मना लेंगे कि भारत की NSG की सदस्यता को लेकर वो किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज ना कराए। इंडियन एक्सप्रेस में काबुल हमले में जो दो भारतीय मरे हैं उनको पहले पन्ने पर जगह मिली है। इसके अलावा जनसत्ता में एक कार्टून छपा है जिसमें योग दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आंखें बंद करके पॉजिटिव विचार लाइए और दाल और टमाटर की कीमतों के बारे में मत सोचिए।
जी बहुत शुक्रिया प्रभात आपका अखबारों की समीक्षा का। और अब खेल समाचार। भारत ने कल हरारे में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से मात दी और पहले मैच में मिली हार का बदला भी चुका लिया। हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने इस मैच को लेकर बात की वरिष्ठ खेल पत्रकार मलनी रफे।
धोनी ने जो भरोसा जताया था, जिस तरह से एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया, अपने नए गेंदबाजों को लाकर उन्हें मौका दिया, वो उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो इस बार धोनी कोई चांस लेना नहीं चाहते थे क्योंकि सीरीज़ में अगर 2 मैच लगातार हार जाते तो सीरीज़ हाथ से निकल जाती। इसलिए उन्होंने दोबारा बलविंदर सरान को बुलाया, कुलकर्णी को बुलाया, अक्षर पटेल, चहल और बुमराह, और बुमराह ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। जहां तक जिम्बाब्वे की पारी का प्रश्न है तो भारत को बहुत कुछ करना नहीं पड़ा और जिम्बाब्वे 57 रन के स्कोर पर उसने 5 विकेट खो दिए थे और धोनी की जो अप्रोच थी, धोनी का जो रवैया था वो बड़ा साफ था कि जिस तरह से ये अपने आप ही विकेट एक के बाद एक धराशायी होती जा रही है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें कि किसी भी टीम को अगर आप 9 विकेट पर 99 रन के स्कोर पर ही समेट देते हैं तो इसका मतलब कि ये बाघ और बकरी की लड़ाई में बदल जाता है ऐसा मैच। और 10 विकेट से जीत कर भारत ने एक रिकॉर्ड कायम किया है क्योंकि 2020 मैच में भारत अभी तक कोई भी मैच 10 विकेट से नहीं जीता था।
भारतीय टीम से कितना मनोवैज्ञानिक दबाव हटा है इस जीत के बाद और क्या जिम्बाब्वे से बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है?
देखिए, जिम्बाब्वे की कोशिश तो यही होगी क्योंकि एक बार उन्होंने जीत का स्वाद चख लिया है और हमें ऐसा लगता है कि वो मनोवैज्ञानिक दबाव में खेल रहे थे। ये जो बड़े बड़े नाम वापस बुलाए गए टीम में, मेरे ख्याल से इनके हाथ में गेंद देखकर थोड़े से घबरा से गए क्योंकि उनकी भी टीम में बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं नहीं और भारत की टीम के सामने वो अपनी असलियत को पहचानते हैं। मगर हाँ, तीसरे मैच में एक बात मानकर चली कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है, वो अपनी पूरी ताकत लगा के खेलेंगे और अगर जिम्बाब्वे की टीम ने अपनी गलती से सीख ली और उसका विश्वास दोबारा लौटा, कई अगर मगर हैं इसमें, मगर अगर उसका विश्वास दोबारा लौटा कि हाँ जिस प्रकार से उसने एक मैच जीता उस प्रकार से तीसरा भी जीत सकता है तो एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।
ये थे मलय नीरव। और अब सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रैली में जिस शख्स ने पुलिसकर्मी से बंदूक छीनने की कोशिश की थी वो ट्रंप की हत्या करना चाहता था। अदालत में पेश किए गए कागजात के आधार पर ये बात कही जा रही है। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पिछले साल 21 जून से इसे मनाने की शुरुआत हुई है। रूस के एक फुटबॉल सपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष को फ्रांस में एक मैच के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मैच के दौरान हुड़दंग मचाने का आरोप है। बहरीन के सबसे महत्वपूर्ण शिया मौलवी शेख ईसा कासिम की नागरिकता रद्द करने के खिलाफ उनके हजारों समर्थकों ने बहरीन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुलिस ने जूतों की एक दुकान के मालिक को ईश निंदा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है। दुकानदार पर आरोप है कि वो हिंदुओं के पवित्र ओम निशान लगे हुए जूतों को बेचता था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।